लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत, ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। प्रभु, मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन, मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहीं। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुन प्रभु, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नव जीवन दे। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले दुष्ट अत्याचारी मेरे निकट आ रहे हैं, प्रभु तू भी मेरे निकट है। तेरी सब आज्ञाएं विश्वसनीय हैं। मैं बहुत पहले से यह जानता हूं कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 145 से लेकर 152 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भजनकार प्रभु ईश्वर से विपुल जीवन की याचना करना जारी रखता है। वस्तुतः जीवन, विपुल जीवन और पूर्ण जीवन ही स्तोत्र ग्रंथ की इस लंबी कविता का सार है। मनुष्य जीना चाहता है, वह पूर्ण जीवन चाहता है और इसके लिए उसे ईश्वर की संहिता से ही शक्ति मिलती है। श्रोताओ, इस तथ्य पर भी हम गौर कर चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह के युग के बाद संत पौलुस ने सबसे पहले हमारे युग में विश्वास का प्रचार किया। इससे पहले रोमी जनता एक ईश्वर में विश्वास अथवा संहिता से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। न तो वह संहिता शब्द का अर्थ समझती थी और न ही अब्राहम के वंश में जड़ीभूत विश्वास से परिचित थी। इस प्रकार संत पौलुस इस विश्वास के प्रथम संप्रेषक और प्रसारक बने। उन्होंने ही गैर विश्वासियों के बीच विश्वास का बीज आरोपित किया। रोमियों को प्रेषित पत्र के 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का निर्णय मनुष्यों के कर्मों पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है।
हे कृपालु करुणामय नाथ, विनीत मन आया हूं पास। हे कृपालु मन आया हूँ पास। हाथ छोड़ू ना मैं तेरा साथ, छोड़ू ना मैं हाथ हारा, छोड़ू ना मैं तेरा साथ, दया करो प्रभु दया करो, क्षमा करो मुझको हिनाथ, दया करो प्रभु दया करो, क्षमा करो मुझको हिनाथ, क्षमा।
और अब आइए 119वें भजन के 153 से लेकर 160 तक के पदों में निहित शब्दों पर गौर करें। मेरी विपत्ति पर दृष्टि डाल और मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैंने तेरी संहिता को नहीं भुलाया, मेरे पथ का समर्थन कर और मेरी रक्षा कर, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नव जीवन दे, मुक्ति विधर्मियों से दूर है क्योंकि उन्होंने तेरी संहिता की उपेक्षा की, प्रभु तेरी कृपा असीम है, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नव जीवन दे, मेरे अत्याचारी और विरोधी अनेक हैं किंतु मैं तेरी संहिता से विमुख नहीं हुआ, विश्वासघातियों को देखकर मुझे घृणा होती है क्योंकि उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन नहीं किया, देख मैं तेरे आदेशों से कितना अनुराग करता हूं, प्रभु अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझे नवजीवन दे, तेरी शिक्षा सत्य पर आधारित है, तेरे न्याय का प्रत्येक निर्णय अपरिवर्तनीय है। श्रोताओं, उक्त काव्य छंद का अंतिम पद इस भजन का चरमोत्कर्ष है। भजनकार यह कहकर इस बिंदु तक भक्त को ले जाता है कि इस प्रकार की बात वह इसलिए कह सका क्योंकि ईश्वर का वचन सत्य पर आधारित है, ईश्वर का वचन खुद ब खुद सत्य है, ईश्वर का वचन न्याय पर आधारित है, वह केवल दार्शनिक रूप से ही सत्य नहीं है जैसा कि पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुनना चाहा था। संत योहन रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 38वें पद के अनुसार प्रभु यीशु से पिलातुस प्रश्न करता है, सत्य है क्या? ईश्वर का वचन हमारे जीवन के हर पक पर सत्य है, जीवन में आने वाली समस्त व्यथाओं कठिनाइयों और दुख कष्टों में ईश्वर का वचन सत्य बना रहता है, वह इस संसार की सारी बुराइयों के बीच भी सत्य बना रहता है, इसीलिए भजनकार संसार की बुराइयों और अत्याचारों से घिरा होने पर भी ईश्वर को पुकारता है और उनसे आर्त याचना करता है कि प्रभु आकर उसे उसके कष्टों से उबारें और उसका उद्धार करें। ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि इस भजन की रचना के पीछे इजरायली जाति का इतिहास छिपा है। इजरायली इतिहास ही इस भजन की पृष्ठभूमि थी। इजरायली जाति नबुकेत नजर के अत्याचारों के नीचे कुचल डाली गई थी तथा उसे बाबुल निर्वासित कर दिया गया था। उन्हीं दिनों की पीड़ित बातों को याद करते हुए भजनकार भक्तों को प्रभु ईश्वर के न्याय की याद दिलाता है और उनसे विश्वास में सुदृढ़ होने का निवेदन करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता पर पूरा भरोसा है। वह नबी ईसाया की भविष्यवाणी को याद करता है। नबी ईसाया के ग्रंथ के 43वें अध्याय के 11वें और 12वें पदों में हम निर्वासन में जीवन यापन करने वालों को दी गई सांत्वना के बारे में पढ़ते हैं। मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं, मैंने मुक्ति विधान की घोषणा की और उसे पूरा किया, मैंने भविष्यवाणी की तुम्हारे किसी पराये देवता ने नहीं, प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो और मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। श्रोताओं, भजनकार ने वस्तुतः यह कहना चाहा है कि मुक्ति केवल ईश्वर से मिलती है, ईश्वर ही उद्धार करता है, ईश्वर के साथ वैयक्तिक संबंध से ही मनुष्य उद्धार पा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिस्र की दास्ता से मुक्त होकर भागी इजरायली जाति ने लाल सागर को विभाजित होते और अपने लिए रास्ता साफ होते देखा था, इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जिनमें हम मनुष्यों पर प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता को हम प्रकट होते देखते हैं। आगे 161वें और 162वें पदों में भजनकार ईश्वर से फिर एक बार कहता है, प्रभु शासकों ने मुझ पर अकारण अत्याचार किया, किंतु मेरा हृदय केवल तेरी शिक्षा के उल्लंघन से डरता है। मैं तेरी प्रतिज्ञा के कारण वैसे ही आनंदित हूँ जैसा कोई बड़ा खजाना मिलने पर आनंदित होता है। मैं सारे हृदय से असत्य से घृणा करता हूँ, तेरी संहिता ही मुझे परम प्रिय है।
रचनाए तेरी तुझको बखाने,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 19 मार्च को संत जोसेफ के पर्व दिवस पर वैटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय में क्रूसत्याग अर्पित करते हुए कैदियों के लिए प्रार्थना की तथा आराधना प्रार्थना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विश्वासियों को आध्यात्मिक यूखरिस्ट में भाग लेने का निमंत्रण दिया। धन्य कुंवारी मरियम के दूल्हे एवं कलीसिया के संरक्षक संत जोसेफ के पर्व के दिन संत पापा ने प्रार्थना अर्पित करते हुए कहा, आइए हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो जेल में हैं। वे जेल के अंदर क्या होगा इस अनिश्चितता के कारण बहुत अधिक चिंतित हैं। वे अपने परिवारों की भी याद कर रहे हैं और बीमार प्रियजनों के लिए परेशान हैं। आइए आज हम उनके करीब रहें जो जेल में हैं। वे इस अनिश्चित एवं दुखद घड़ी में बहुत अधिक दुख सह रहे हैं। संत पापा ने प्रवचन में संत जोसेफ के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक धर्मी व्यक्ति थे। वे धर्मी इसलिए केवल नहीं थे कि विश्वास किए, किंतु उन्होंने उस विश्वास को जिया। संत पापा ने संत जोसेफ की बुलाहट की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, वे एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए चुने गए थे जो सच्चे मानव थे, किंतु सच्चे ईश्वर भी थे। केवल ईश्वर वैसे शिक्षा दे सकते थे, पर ईश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को चुना जो मनुष्य होते हुए भी ईश्वर के साथ बात कर सकते थे और ईश्वर के रहस्य में भी प्रवेश कर सकते थे। यही जोसेफ का जीवन था। संत पापा ने गौर किया कि जोसेफ किस तरह एक विधिवत व्यक्ति थे। एक पढ़ाई के रूप में अपने काम में वे निपुण थे। लकड़ी को सही तरीके से तराशना एवं आकार देना जानते थे। संत पापा ने कहा कि उन्होंने उसी विधिवतता एवं सहजता से ईश्वर के रहस्य में प्रवेश किया। वे विधिवत थे, किंतु उन रहस्यों में भी प्रवेश कर सकते थे जो उनके नियंत्रण में नहीं था। यही जोसेफ की पौत्रता है। जब सुसमाचार जोसेफ के स्वप्न के बारे बतलाता है, तब यह हमें समझाता है कि उन्होंने रहस्य में प्रवेश किया। संत पापा ने कलीसिया के संरक्षक के रूप में संत जोसेफ की याद करते हुए कहा क्या पोप अथवा कलीसिया के दूसरे सदस्य रहस्य में प्रवेश कर सकते हैं? रहस्य में प्रवेश किए बिना कलीसिया अधूरी है, एक उदार संगठन मात्र है जो नियमों और तौर तरीकों का पालन करती है। उन्होंने कहा कि जब कलीसिया रहस्य में प्रवेश करने की क्षमता खो देती है, तब वह आराधना करने की क्षमता को भी खो देती है। आराधना तभी की जा सकती है जब व्यक्ति ईश्वर के रहस्य में प्रवेश करता है। संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, हम प्रभु से कृपा की याचना करें कि कलीसिया प्रत्येक दिन की यथार्थता में और रहस्य की यथार्थता में जी सके। प्रभु अपने कलीसिया को यही कृपा प्रदान करे। विश्व भर के धर्म सामाजियों ने 22 मार्च को विश्व स्तर पर एकात्मकता एवं प्रार्थना दिवस का आह्वान किया है, ताकि कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित लोगों के प्रति सामीप्य प्रकट किया जा सके। विभिन्न धर्म संघों की परमाधिकारिणियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ की अध्यक्ष सिस्टर जोलांता काफ्ता रम्मी ने कहा, यह हम प्रत्येक के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संकट का जवाब देने का समय है, विशेषकर जो सबसे कमजोर हैं और सबसे अधिक खतरे में हैं। उन्होंने धर्म समाजों के सदस्यों से आह्वान किया कि अगले रविवार 22 मार्च को विश्व स्तर पर एक दिवसीय एकात्मकता एवं प्रार्थना दिवस रखा जाए, खासकर उनके लिए जो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हैं। सिस्टर जोलांता ने कहा कि यह समय विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं हमारी सरकारों के निर्देशों का पालन करने का समय है। सिस्टर ने यह भी कहा कि यह प्रार्थना तथा एक दूसरे की चिंता करने की हमारी जिम्मेदारी को एकात्मकता एवं जागरूकता द्वारा प्रकट करने का समय है। उन्होंने कहा कि यह असाधारण समय हमें उदारता के कार्य एवं कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने हेतु जगह देने का समय है, खासकर उनके प्रति जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, दवाई की खोज कर रहे हैं और जो सार्वजनिक सेवा में संलग्न हैं। चाहे वे जहां कहीं भी हों अथवा जो कोई भी हों, वे विश्व भर की धर्म बहनों की प्रार्थनाओं को महसूस कर सकें। संत पापा फ्रांसिस ने 19 मार्च को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर प्रभु से प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने संदेश में लिखा, संत जोसेफ के पर्व के दिन हम प्रभु से प्रत्येक दिन के जीवन एवं रहस्य को यथार्थता से जीने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। रहस्य में प्रवेश करने का अर्थ स्वप्न देखना नहीं है, रहस्य में प्रवेश करने का अर्थ है आराधना करना। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, विश्वास विनम्र एवं ठोस कदमों से आगे बढ़ता है। संत पापा फ्रांसिस ने इटली के लिए विशेष प्रार्थना करने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट संदेश में विश्वासियों का आह्वान करते हुए लिखा है, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज रात 9 बजे इटली के सभी लोगों के लिए रोजरी प्रार्थना में आध्यात्मिक रूप से भाग लें। संत मरियम रोगियों के स्वास्थ्य एवं संत जोसेफ विश्वास के व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करें। अहिंसात्मक प्रदर्शन करते हुए सन 1930 में महात्मा गांधी की 24 दिनों की नमक यात्रा, 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी के मील का पत्थर था। महात्मा गांधी की नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह की इन दिनों 90वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की गई थी। रोम के परमधाम पीठ सलेशन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फादर पीटर गोंजास ने कहा कि नमक यात्रा के 90 वर्षों बाद आज भी महात्मा गांधी के सिद्धांत प्रासंगिक हैं। आज विश्व के कई जगहों में गांधी जी के सिद्धांत के अनुरूप शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक प्रदर्शन किए जाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।